नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्यूंग के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्री म्यूंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से कल मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए श्री म्यूंग की सराहना की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। आज उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित थे। राष्ट्रपति ली और उनकी पत्नी किम हिया क्योंग ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ये राष्ट्रपति म्यूंग की पहली भारत यात्रा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायक ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित तेल पाइपलाइन पर विचार विमर्श किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्रे ने कोलंबो में बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत में त्रिंकोमाली में ऊर्जा केंद्र परियोजना और गैस पाइपलाइन लिंक के प्रस्ताव पर विचार हुआ। बैठक के दौरान श्री राधाकृष्णन ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और द्विपक्षीय विकास सहयोग पर बल दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज श्रीलंका के मध्य प्रांत में स्थित नुवारा एलिया की यात्रा करेंगे, जहां जमीनी स्तर पर जुड़ाव दिखाई देगा। भारत के कल्याण और दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए श्री राधाकृष्णन भारतीय आवास परियोजना स्थलों पर रहने वाले भारतीय मूल के तमिल समुदाय के सदस्यों से सीधा संवाद करेंगे। संदेश स्पष्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच साझेदारी केवल नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों से सीधे जुड़ाव के माध्यम से और मजबूत हो रही है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत आज फिर शुरू होगी। ये वार्ता 22 अप्रैल तक वाशिंगटन में होगी। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की शांतिवार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत फिर शुरू होने का दावा करते हुए कहा था कि अमरीकी वार्ताकार आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाताओं का आंकड़ा जारी कर दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 3,07,77,171 मतदाता इस चरण में मतदान के लिए पात्र हैं। निर्वाचन आयोग ने 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 2,193 त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का प्रचार अंतिम दौर में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जनसभा और रोड शो करेंगे। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तरी 24 परगना जिले के खारदाहा में जनसभा को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने आज महिला आक्रोश रैली का आयोजन किया। भाजपा का कहना है कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है और आज की रैली इसी के विरोध में बुलाई गई है। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना चाहती थी। सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने के दावे से जुड़े लिंक को प्रसारित करने वाले संदेश को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने कहा कि इस तरह की सरकार की कोई योजना या विज्ञापन नहीं है। अमरीका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड कच्चा तेल की कीमत 7.18% बढ़कर $96.87 प्रति बैरल पर पहुंच गई। आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स के 255 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 200 रन ही बना सके। प्रियांशा आर्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।